पब्लिक जो है वो ज्यादा सोल्ड आउट नहीं है इस आइडिया को. जारा जो है आपको पता ही है जी, बहुत बड़ा फैशन ब्रांड है. जारा से लोग जो है आज बहुत ही ज्यादा खफा नजर आए, क्योंकि ये जो फैशन ब्रांड है इसने क्या किया कि इसने अपनी जो लेटेस्ट जो एड कैंपेन चलाई है, जिसको कि आज इन्होंने अपनी वेबसाइट से फौरन हटाया है, इसमें देखा जा रहा है कि एक जो मैनिकन है वो एक तो उसके लिम्स नहीं है, और दूसरा ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कोई एक लाश उठाई हुई है. और उस पर लोगों ने कहा कि ये जो है इट इज रेमिनिसेंट टू, यानी कि ये मिलती है जो गाजा के अंदर इस वक्त जो चल रहा है, जो पैलेस्टीनियंस को मारा जा रहा है. तो इंतहाई इनसेंसिटिव किस्म की ये जो है कैंपेन है. जारा जो है उसने जवाब इसका देते हुए कहा है कि हम हमेशा सोचते हैं कि एक रिफ्रेशिंग कंटेंट जो है वो पैदा किया जाए, और ये जो सारी की सारी कैंपेन थी ये हमने जुलाई के अंदर कंसीव की थी, और हमने इसकी ये जो पिक्चर्स थी ये सितंबर के महीने में ली थी, और अब हमने रोल आउट किया है. और ये जो लड़ाई है हमास की और इसराइल की, ये तो शुरू हुई थी अक्टूबर में, तो हमको पता नहीं था उस वक्त कि ये वॉर शुरू होगी. तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये जो आपने दिखाया हुआ है कि उसने व्हाइट श्राउड में कुछ लपेटा हुआ जा रहे हैं, वो कहते हैं जी ये तो कोई आदमी नहीं है, ये तो ऐसे हमने बताया था कि जैसे कोई जो है वो कपड़े का जैसा थान जिसको बोलते हैं वो लेके जा रहे हैं. उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये सब चीज जो है ये मिलती है. ये जो इतना ज्यादा जीनोसाइड चल रहा है इसराइल की तरफ से गाजा में, तो बहरहाल जी उन्होंने ये हटाया, लेकिन लोगों ने आज इसको काफी बैकलैश दिया. यूरोपियन यूनियन के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उन्होंने आज रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे ब्रसल्स के अंदर, क्योंकि वहां पर यूरोपियन यूनियन के फॉरन मिनिस्टर्स जो हैं वो जमा हुए हुए हैं, और उन्होंने कहा जी कि मैं प्रपोज करूंगा कि ये जो है ज्यूइश सेटलर्स इनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, क्योंकि ये जो है वेस्ट बैंक के अंदर जो है बहुत फैलते जा रहे हैं. आपको पता ही है कि इसराइल की जो ये वॉर चल रही है उसमें हजारों ही पैलेस्टीनियंस जो है उनकी डेथ हो चुकी है, खासतौर पे बच्चे जो हैं उनकी इतनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं कि वहां पे अब मैस ग्रेव्स बनाई जा रही हैं, जिसके के ऊपर दुनिया का बहुत ज्यादा जो है वो आउटक्राई है. उसी के ऊपर जो है ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल बोल रहे थे कि ये सबके होते हुए हमको लग रहा है कि वी आर रियली अलार्म्ड एज अ ब्लॉक, हम अलार्म्ड हैं कि ये जो वायलेंस जो है वेस्ट बैंक में चल रही है, खासतौर पर जो एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स जो है वहां पर कर रहे हैं. उन्होंने बहुत कंडेम किया इसराइली गवर्नमेंट के डिसीजन को, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने अप्रूव किया था 1700 मोर हाउसिंग यूनिट्स इन जेरूसलम. उन्होंने कहा जी कि ब्रसल्स जो है इसको वायलेशन समझता है इंटरनेशनल लॉ की, और अब वक्त आ गया है कि हमको वर्ड्स जो है उनसे मूव करके एक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, और ये जो एक्ट्स ऑफ वायलेंस है अगेंस्ट पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन इन वेस्ट बैंक, इसको रोकने की जरूरत है. उन्होंने कहा जी कि मैं तो बहुत ज्यादा कीन हूं कि मैं ये जो खून खराबा वहां पर चल रहा है और ये जो एक्सट्रीमिस्ट सेटलमेंट हो रही है इसको मैं रोकूं. अब ब्लॉक इस चीज को मानेगा या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन मैं ये रेजोल्यूशन जरूर लाऊंगा. और उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन ऑफिशियल्स को मैंने कहा कि एक पूरी लिस्ट बनाएं ऑफ प्रोमिनेंट सेटलर्स जो कि वहां पे एंटर हो रहे हैं और अटैक्स कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर. तो जनाब ये आज बात जो है ये भी आई. अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक दोहा के अंदर एक समिट चल रहा है जिसको कि बोला जा रहा है दोहा फोरम. उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अब वो उधर जमा हुए हुए हैं, मिडल ईस्ट से आए हुए हैं, और वो ये जो जो कुछ भी लड़ाई चल रही है यहां पे गाजा के अंदर उसके ऊपर उन्होंने बात की. और उसके अंदर एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स के अंडर जो ये शुरू किया था इसने, जो ट्रंप साहब ने 2020 में, जिसमें कि उसने यूएई, बहरेन, मोरक्को, सूडान को कहा था कि इसराइल के साथ दोस्तियां बनाओ, और अब दूसरे कंट्रीज को भी वो कह रहा था, तो ये अब नॉर्मलाइजेशन जो है ये अब मुश्किल नजर आती है, क्योंकि 18,000 से ज्यादा मुसलमान पैलेस्टीनियंस जो हैं मर चुके हैं वहां पे पैलेस्टाइन में, और मुस्लिम्स जो हैं इसको जीनोसाइड कह रहे हैं, और ये जो क्राइम्स आईडीएफ यानी कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं इसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं और सीज फायर की तरफ कह रहे हैं कि जाने की जरूरत है. तो इसमें लग नहीं रहा है कि अब जो बाकी के अरब कंट्रीज जो बड़े की थे, जैसे कि ईरान था, सऊदी अरेबिया था, जिसके के बारे में कहा जा रहा था कि ये दोस्तियां बनाएगा इसराइल के साथ, वो अब मुश्किल नजर आता है. गालिब दाले जो हैं सीनियर फेलो एट मिडल ईस्ट काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा जी कि ये देयर इज अ ग्रोइंग डिसकंटेंट विद द यूएस, और ये जो यूएस की जो पॉलिसी जो है इसराइल के की वजह से, तो उसकी वजह से अरब और मुस्लिम वर्ल्ड खुश नहीं है, और इसका मतलब ये है कि अब मिडल ईस्ट में लोग ज्यादातर चाइना और रशिया की तरफ जो है वो ध्यान देंगे, क्योंकि लोग इस वक्त इमोशनली, पॉलिटिकली और सोशली जो है बड़े सैड हैं. उमर रहमान वो भी यहीं से मिडल ईस्ट काउंसिल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स से थे, उन्होंने भी कहा जी कि ये पूरे के पूरे इलाके के अंदर जो हेट्रेड फैला दी है इसने इसराइल ने, ये अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ इनको लेकर नहीं जाएगी। हालांकि 2002 में अरब लीग ने कहा था कि अरब नेशंस को इसराइल के साथ दोस्ती बनाने की जरूरत है, लेकिन उस सूरत में अगर ये पूरी तरह से विदड्रॉ करे उन लैंड से जो 1967 की वॉर के बाद इन्होंने पैलेस्टीनियन से ले ली थी, और 2020 का जो अब्राहम एकॉर्ड था उसके साथ तो दोस्तियां चल रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली हमने आपको एक खबर सुनाई थी कि ईरान के चाइना ने एक ब्रोकर की थी डिटेल सऊदी और ईरान के बीच में, तो और कहा था कि ये लड़ाइयां छोड़ने की जरूरत है, और ईरान जो है उनके ऊपर भी चूंकि कॉन्स्टेंटली सैंक्शंस लगी हैं तो वो भी अब जाहिर है कि नए दोस्त जो है वो ढूंढ रहा है। अभी आपको पता ही, हमने कल भी बताया था कि ईरान रशिया भी गया हुआ था। तो इसी फोरम के ऊपर बात करते हुए सनम वकील ने कहा, जो कि मीना प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं चैटम हाउस, के ईरान जो है इस पीस प्रोसेस का एक इंटेग्रल पार्ट है, ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स है इसका एक इंटेग्रल पार्ट है। अगर ईरान को एंड टू सम एक्सटेंट सऊदी जो है, बल्कि टू यू नो क्वाइट क्वाइट एन इंपॉर्टेंट एक्सटेंट, अगर सऊदी को भी इस प्रोसेस में ना दाखिल किया गया तो इस रीजन के अंदर जो है इसराइल के साथ दोस्तियां और नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज जो है मुश्किल नजर आएंगे। तो जनाब जाहिर है मुश्किल तो अब नजर आएंगे क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो बड़ी इनसे नाराज है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है उसने आज अपने नए आंकड़े ड्रग्स के ऊपर दिए हैं, और उन्होंने कहा है जी कि किसी जमाने में अफगानिस्तान ओपियम का टॉप प्रोड्यूसर होता था, इस वक्त म्यांमार जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है। और इन्होंने कहा जी कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट ने यहां पे 2022 से टेक ओवर किया है तो उस वक्त से 95% डिक्लाइन आया है ओपियम कल्टीवेशन में। तो इसका सारे का सारा ये जो ग्लोबल सप्लाई है ये शिफ्ट हो गई है म्यांमार में, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि ये फार्मर्स जो हैं इनको अब ज्यादा पैसे कमाने का जैसे चस्का बोलते हैं वो लग गया। वो कहते हैं जी कि 75% वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं ओपियम पॉपी फार्मिंग करके कंपेयर टू जो नॉर्मल क्रॉप होती थी। एवरेज फ्लावर प्राइस जो है दे आर सेलिंग इट फॉर $355 पर केजी, और इसलिए जो है म्यांमार में ज्यादा अब फार्मर्स इस तरफ जा रहे हैं और जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनसे हट रहे हैं। वो कहते हैं जी कि पहले तो जो है वो कुछ ही एरिया के ऊपर जो है जैसे कि 40,100 हेक्टर्स के ऊपर कल्टीवेशन होती थी डिफरेंट क्रॉप्स की, लेकिन अब 47,000 हेक्टर्स के ऊपर विच इज द 18% इंक्रीज उसके ऊपर अब सिर्फ पॉपी की कल्टीवेशन हो रही है, जिससे कि इस रीजन के अंदर और ज्यादा फैलेगी जो है ये ड्रग्स की प्रॉब्लम। और इसके अंदर जो अब यील्ड आ रहा है, आपको पता ही है कि पॉपी का तो आप कहीं पे भी फेंक दें बीज तो वहां पे वो उग आती है, इट्स वेरी इजी टू ग्रो इट। तो वो कहते हैं जी कि यील्ड जो है वो भी 16% बढ़ गई है विच इज 22.9 केजी पर हेक्टर। तो जो फार्मर्स हैं वो बड़े रिच होते जा रहे हैं और बड़े खुश हैं, वो कहते हैं जी अब हमको यही कल्टीवेशन जो है वो करना है। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। यहां पे 1400 लोगों की फैसिलिटी है, बड़ा जबरदस्त किस्म के ये इनके जो बैंक्वेट हॉल्स हैं, और हमने आपको बताया कि अगर आप 1400 बंदे बुला रहे हैं तो टाई उसमें और बुलाने पड़ेंगे आपको, माजिद पाई मैं एंड जो है आमिर। और अगर आपको अपना बिजनेस का या फैमिली का इवेंट करना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनका नंबर है 6479653823। और जनाब नान एंड कबोब पे आपको पता है माजिद भाई देखें कितने स्लिम और स्मार्ट हो गए हैं, वो इसीलिए कि नान एंड कबोब के ग्रिल्ड आइटम्स खाते हैं, हैं जी। तो आप इनके साथ ऑर्डर डाल सकते हैं एट 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसेस सागा, इनको आप कॉल कर लें एट 4162858191। और ग्रिल एंड चिक, पहले ये थे ब्रैम्पटन में 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट के ऊपर, अब ये आगे हैं मिसेस सागा में 3525 प्लैटिनम ड्राइव। तो अगर आपको इनके साथ भी ऑर्डर डालना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9056062345 पे।
मैं दो डेंटिस्ट का नाम लूंगा आपके लिए, डॉक्टर मुजीब काजी हमारे और आपके डेंटिस्ट 39 क्वीन स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन क्वींस एंड रथरफोर्ड के कॉर्नर पर, और दूसरी लोकेशन इनकी क्राइसलर एंड विलियम्स पार्क के कॉर्नर पर। डॉक्टर मुजीब काजी अगर आपके आपके घर में किसी की भी दांतों में खराबी है तो 9052578661 इनका फोन नंबर है, और दूसरी हमारी डेंटिस्ट डॉक्टर पद्माजा रानी, डॉक्टर पद्माजा 3410 शेपर्ड एवेन्यू, शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर हमारी और आपकी डेंटिस्ट, 4162997466। लास्ट बट नॉट लीस्ट फजल वदूद साहब, फजल वदूद इंश्योर प्रो से इनका ताल्लुक है और सब इनका कहना है कि आपने कोई किसी भी किस्म की इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप फजल वदूद से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9056075000 इनका फोन नंबर है जी।
हाँ जी, अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तो अफजार है, किस्मत खुल गई है। अल अजीजिया का जो ग्राफ जो रेफरेंस था उसके अंदर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी है और अब ये जो है सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बनेंगे। इनके साथ जो है इनके जो लॉयर हैं आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने भी बड़ा वेलकम किया इस वर्डिक्ट को और उन्होंने कहा जी कि अब हालात फेवरेबल हो गए और ये जो है इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकेंगे। पीएमएलएन की स्पोक्स पर्सन जो है मरियम औरंगजेब, उन्होंने हाईकोर्ट का बड़ा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी कि थैंक गॉड नवाज शरीफ साहब को एक्विटल मिला है तमाम केसेस में, विच मीन्स कि ये सारे फॉल्स केसेस थे, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इनको जस्टिस 7 साल के बाद मिली है और नवाज शरीफ साहब जो है अब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और इस मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और कंट्री को प्रॉस्पैरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है, कोर्ट्स हो तो ऐसी हो है मजते ही, पहले तो इसी कहने सा लाहौर हाईकोर्ट, अब तो हम कहते हैं बल्ले बल्ले इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी। मसला थोड़ा फंस गया कनेडियंस ते जाओ साड़ियां कोर्ट्स से कोल, देखो कैसे मसले हल होते हैं एंज एंज। ठीक है जी, अच्छा जनाब आसिफ अली जरदारी जो है ना उनको चैन नहीं है, जब उनके ऊपर केसेस या होते हैं ना कुछ तो वो मरने के करीब हो जाते हैं, वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वो मैं मर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल में रहते हैं। अब आजकल चूंकि इनके ऊपर कोई केसेस नहीं है तो ये बिल्कुल अचाज बचाज है और आज तो इन्होंने हद कर दी है, मतलब इन्होंने बिल्कुल ही लाइन रेड लाइन क्रॉस कर ली। आज इन्होंने बहुत ज्यादा निशाने साधे जमायमा खान जो कि इमरान खान साहब की फॉर्मर वाइफ थी, और ना सिर्फ ये बल्कि इनकी मां के ऊपर के खिलाफ भी बहुत सारे जो है ताने कसे, लेडी एनाबल गोल्डस्मिथ जो है उनके खिलाफ भी। अच्छा जी बात क्या हुई, बात ये हुई कि जरदारी साहब से एक इंटरव्यू लिया जा रहा था और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब आप भी और शरीफ साहब भी सारे प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हो, लेकिन पीटीआई जो है उसको अगर 2/3 मेजोरिटी मिल गई, क्योंकि इस वक्त तमाम सर्वे ये शो कर रहे हैं कि पीटीआई जो है वो सबसे ज्यादा मकबूल जमात है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी हां ये जो बाहर से लोग बैठे हुए हैं ना, ये जो वी लॉगर्स हैं, ये सारे उनको फंडिंग कर रही है जमायमा गोल्डस्मिथ, और इसकी मां के बारे में तो क्या ही कहना है, इनकी फैमिली ने तो वॉर जब की थी इजिप्ट के साथ तो उसमें पैसे बनाए हैं, तो ये तो इस तरह के लोग हैं। ते पायन तुसी किस तरह के लोग हो, पायन तुसी अपने गिरबार विच तुहाडे कोल ते 2 लाख रुपए नहीं सन अपना सिनेमा बचाण वास्ते हैं जी, फिर इतना हुण मिलियंस ऑफ डॉलर्स तुहाडे कोल किस तरह है, पहले तुसी अपना दे जवाब दियो। और बिला वजह तो उसके ऊपर जाहिर है कि जमायमा गोल्डस्मिथ जो है वो तो भड़की तो नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ा पोलाइटली कहा, उन्होंने कहा कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये फाइनेंसिंग कर रही हैं, ये और इसकी मां जो है फाइनेंसिंग कर रही है वी लॉगर्स को, तो इसलिए वो जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको तो पता ही नहीं है पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, तो उनको ये लोग मिस गाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम किसी तरह की कोई फाइनेंसिंग नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारा कोई ताल्लुक है, हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज चाहते हैं। और जमायमा ने आज फिर बड़ा डिसेंटली जवाब दिया, आई ओनली वॉन्ट पीस एंड प्रॉस्पैरिटी फॉर पाकिस्तान एंड ऑल दीज एलिगेशन आर एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, बस उसने इतना ही जवाब दिया। अब बड़ी डिसेंट औरत है भाई, मेरा तो इतना कोई सलाम है भाई तेनू, वाह जी वाह क्या बात है। आईएसपीआर की आज एक बड़ी अफसोसनाक जो है प्रेस रिलीज है और उसके मुताबिक 25 सोल्जर्स जो हैं उनकी डेथ हुई आज डेरा इस्माइल खान में जो लड़ाई हुई टेररिस्टों के अगेंस्ट। इसके अलावा जो डिफरेंट ऑपरेशंस यहां पे केपी में चल रहे हैं उसमें 27 टेररिस्ट जो हैं उनकी भी डेथ हुई है। वो कहते हैं जी कि हमें इंटेल बेस एक ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया था दारा जिंदा के अंदर और जो टेररिस्ट का हाइड आउट था इसको बस्ट किया था, 17 टेररिस्ट को हमने मारा था। इसी तरह एक और कुलाची के एरिया में किया था जिसमें के 4 टेररिस्ट मारे थे और ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स करने के लिए और पाकिस्तान के इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर। इनके ऊपर जो हमने छापे मारे थे उसमें वेपन्स और एम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो भी मिले हैं। वो कहते हैं जी कि 2023 जो है अभी तक बहुत ज्यादा उसमें टेरर एक्टिविटीज हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर इन जनरल और केपी के अंदर इन पर्टिकुलर। 470 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एंड सिविलियंस जो हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं इन 1050 टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में 2023 में, और इसमें जो 7 एरियाज हैं अलोंग पाकिस्तान अफगान बॉर्डर इन केपी वो जो हैं टेररिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें के पिशावर, खैबर, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, डीआईके, बाजोड़ और टैंक का एरिया है। अच्छा जी, एक ऐसी पैड़ी खबर सुनाने हैं, एक अच्छी सुनाने हैं, ठीक है ना जी, एक पैड़ी, एक अच्छी, एक पैड़ी, एक अच्छी। अच्छा जी, अब अच्छी खबर यह है कि आपको पता ही है कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज जो है, खास तौर पे जो मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेमको जो है अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और इन्होंने आज एक्वायर किया है 40% एक्विटी स्टेक इन ऑयल एंड गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड। ये पाकिस्तानी कंपनी जो है, इसके साथ उन्होंने डील्स की हैं। उन्होंने कहा जी कि अरेमको चाहती है कि वो जो है ऑयल्स जो हैं उनसे आगे निकल के और भी ज्यादा जो है उसमें एंटर होए, जैसे कि ये लोग बनाते हैं वेल्वोलिन ब्रांडेड ल्यूब्रिकेंट्स, तो वो कहते हैं जी कि इस मार्केट के अंदर जो है केमिकल्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स, इस मार्केट में ये एंटर होना चाहते हैं, और उस सिलसिले में हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अरेमको के डाउनस्ट्रीम प्रेसिडेंट मोहम्मद अल कहतानी जो हैं, उन्होंने कहा है जी कि हम अपनी एक्सपेंशन ड्राइव जो है उसको हम अंडर दैट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एंड ड्राइव हम पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और जो इसमें हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ताकि अपना वर्ल्ड वाइड पोर्टफोलियो जो है इन चीजों के अंदर भी बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान ने एक सेटअप किया था, पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि एक सिविल और मिलिट्री बॉडी का कोलैबोरेशन है, जिसमें कि उन्होंने अब वादा किया है कि हम मुल्क के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे टू टैप द पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। तो उसकी आज ये पहली जो है बड़ी इनकी जीत है कि ये सऊदी अरेमको को इन्होंने एंड इट्स अ ह्यूज ह्यूज न्यूज। दोज हु अंडरस्टैंड व्हाट सऊदी अरेमको इज, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ये जो थी ऑयल कंपनी होती थी किसी जमाने में, फिर कोविड आ गया, फिर इनके हालात काफी अरेमको भी खराब हुए, लेकिन स्टिल दे आर ह्यूज जायंट्स। अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो अपना वर्डिक्ट दिया था आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया था हिंदुस्तान ने, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, यूनियन की गवर्नमेंट जो है, सेंटर की यानी जो गवर्नमेंट है, उसके हर फैसले के हम अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, और हम जो है खड़े रहेंगे कि इस चीज के ऊपर कि ये एब्रोगेटेड ही रहेगा। इसके ऊपर अब जो है आज न सिर्फ कश्मीरियों ने बल्कि और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्होंने भी रिएक्शन दिया। सबसे पहले हम आपको जो कश्मीरी लीडर्स हैं उनके रिएक्शन में के बारे में आपको बताएंगे। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं मीरवाइज उमर फारूक साहब, उन्होंने अपने एक्स पे लिखा कि ये बहुत ही सैड इंसिडेंट है लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जम्मू और कश्मीर जो है उसको जिन लोगों ने पार्टीशन के वक्त जिन्होंने ये कहा था कि इसका एक्सेशन इंडिया के साथ होना चाहिए और उसको बड़ी प्रॉमिसेस दी गई थी, आज उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनके साथ कितना बिट्रेल हुआ है। ये चीज जो है कॉन्स्टेंटली ब्लीड कर रही है ह्यूमैनिटी को, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है जिसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक और स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इंडियन जुडिशरी या इंडियन गवर्नमेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है कि वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिस्प्यूटेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इस तरह के फैसले ला सकते हैं, और ये फाइट जो है ये आर्टिकल 370 या 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, ये फॉर फ्रीडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है फ्रॉम इंडियाज इलीगल ऑक्यूपेशन। हुर्रियत के ही शब्बीर अहमद शाह ने, जो कि इस वक्त दिल्ली के तिहार जेल के अंदर हैं, वहां से उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि ये बेतहाशा इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो डिटेरियोरेटिंग ह्यूमन राइट सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर में उस पर देखना चाहिए और अपना रोल प्ले करना चाहिए, और कश्मीरियों का हक है कि उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए ताकि वो अपनी डिग्निटी के साथ रह सकें एज एनश्राइंड इन द यूएन चार्टर। और उन्होंने कहा जी कि 76 ईयर्स में इंडिया जो है उसने हमारी जितनी जो लेजिटिमेट स्ट्रगल थी उसको क्रश करने की कोशिश की है, जिसके के ऊपर दुनिया का ध्यान होना चाहिए। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान ऑन ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट मुशल हुसैन मलिक जो है उन्होंने भी कहा जी कि ये बिल्कुल गलत है जो कदम उठाया है, और सुप्रीम कोर्ट से हम चाहते थे कि वो शायद सीधे रास्ते पे लेके जाएगी इस चीज को, तो ये जो इनका डिसीजन है दिस इज अगेंस्ट जिनीवा कन्वेंशन एंड यूएन रेजोल्यूशंस। और उन्होंने कहा जी कि ये मोदी और नेतन्याहू जो हैं ये दोनों जो हैं मैसेकर जो है ह्यूमैनिटी का कमिट कर रहे हैं, और खास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस जो है और इंडियन टेररिज्म जो है वो सारी दुनिया में फैला रहे हैं ये लोग, चाहे कश्मीरियों का कत्ल हो या दुनिया में सिखों का कत्ल हो, ये इंडियन गवर्नमेंट जो है अलेजली इसके अंदर इन्वॉल्व, उन्होंने कहा। लीडर फरीदा बहनजी जो कि श्रीनगर में है उन्होंने कहा कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है और अंडर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, तो ये जो आपने आज डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा जी ये इंतहाई बायस्ड है। लीडर अल्ताफ हुसैन वानी ने कहा कि कश्मीरीज का अब इंडियन जुडिशरी के ऊपर कोई भी फेथ नहीं रहा है। जो लीडर है हुर्रियत के ही अल्ताफ हुसैन बट लेकिन वो इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने जो बायस शो किया है जुडिशरी ने, ये इन्होंने ये शो करने की कोशिश की है कि ये प्रायोरिटाइज करते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को और ये जस्टिस के ऊपर भी एनक्रोच कर रही है। जम्मू और कश्मीर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महमूदा मुफ्ती साहबा ने आज एक्स के ऊपर लिखा कि हम अभी भी होप जो है लूज किए हुए नहीं है, हम अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो डिसहार्टेंड है और वो डिसअपॉइंटेड तो हैं लेकिन डिसहार्टेंड नहीं है और ये स्ट्रगल जो है ये कंटिन्यू रहेगी। दल खालसा के लीडर जो हैं पंजाब इंडियन पंजाब में कंवरपाल सिंह, उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था और कश्मीरी जो है पिछले 7 डेकेड से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो ये तो बहुत ही नाइव होता अगर आप ये सोचते कि शायद सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देगी। अलबत्त ये जो लंबा डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा है इसको हल करने की जरूरत है अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी जो है वो रद्द किया है, इग्नोर किया है। इसके बाद जी क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी जो है बाकी दिल्ली के अंदर उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर इन्होंने इसके ऊपर बात की। इसके अंदर कांग्रेस के जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं एमपी चिदम्बरम, उन्होंने और बाकी के जो लीडर्स इनके साथ आज नजर आए वहां पे, उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो अब स्टेक के ऊपर आ गया है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के ऊपर। उन्होंने कहा जी हम रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर और ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या पार्लियामेंट किसी स्टेट को यानी स्टेटहुड का दर्जा खत्म करके किसी को यूनियन टेरिटरी बना सकती है क्योंकि ये एक वन स्टेप डाउन है तो आप यूनियन टेरिटरीज को वन स्टेप अप लेके जाते हैं और स्टेटहुड उसको देते हैं, स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज नहीं बनाया जा सकता। इनके साथ बैठे थे राज्यसभा के एमपी एंड लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी कहा जी कि अंडर आर्टिकल 3 जिसका के हवाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जा सकता है। आप स्टेट का कुछ हिस्सा यूनियन टेरिटरी में चेंज कर सकते हैं, उसको 2 से 3 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी की पूरी स्टेट को यूनियन टेरिटरी आप नहीं बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये कॉन्ट्रडिक्शन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सीपीआईएम जो है उसने भी इसको बड़ा डिस्टर्बिंग का इस डिसीजन को, AIMIM के जो एमपी हैं असदुद्दीन अवेसी, उन्होंने कहा कि ये ग्रैंड बिट्रेयल है विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये किस तरह से स्टेटहुड्स खत्म करके स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज बना रही है और ये एक पेंडोरा बॉक्स खोलेगी क्योंकि इस तरह की और स्टेट्स को भी फिर अब इसी डिसीजन के अंडर यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया जा सकेगा जिसकी की वजह से उनको बेनिफिट्स कम मिलेंगे और चीजें कम मिलेंगी। डीएमके के एमपी मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370 इज अटैक ऑन फेडरेशन। राज्यसभा के चेयर और वाइस प्रेसिडेंट जगजीत धांधकर ने उनको बड़ा डांटा और उन्होंने कहा जी कि लैंड ऑफ द लॉ के अगेंस्ट अब्दुल्ला साहब आप कैसे बोलोगे, लेकिन कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपालन जो थे उन्होंने कहा जी कि आप कैसे किसी को रोकेंगे अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी की गवर्नमेंट से डिफरेंट है, उनका राइट है, हर बंदे का हर एमपी का राइट है कि अगर उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके साथ है तो वो सामने लाके रख सकता है। तो जनाब ना सिर्फ लोकसभा के बाहर बल्कि लोकसभा के अंदर भी आज काफी गर्मा गर्मी फिर से देखी गई। और जनाब एक्ट्रेस काजोल जो हैं उन्होंने कहा जी एक दफा मेरी लड़ाई हुई थी बहुत ज्यादा करण जौहर से और ये लड़ाई तकरीबन 45 मिनट्स तक चलती रही। हुआ ये कि आपको पता ही है कि काजोल ने बड़ा टॉम बॉयज सा रोल प्ले किया था अंजलि का, करण जौहर की 1998 की जो फिल्म थी कुछ कुछ होता है तो, और उसके अंदर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी भी थे, शाहरुख खान राहुल था और रानी मुखर्जी टीना थी। तो काजोल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने जो है करण जौहर से कहा कि मैं रानी का रोल करना चाहती हूं, मैं टीना बनना चाहती हूं, लेकिन करण किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था नहीं तुम अंजलि ही का रोल करोगी। तो वो कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा तकरीबन 45 मिनट्स तक इसके साथ लड़ाई की फिर भी ये जो है अपनी बात पे अकड़ा रहा। लेकिन जनाब मैडम आपके लिए अच्छा हो गया क्योंकि उस साल जो फिल्म फेयर अवार्ड था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस वो फिर आपको मिला, काजोल को मिला है जी। तो मीन्स करण जौहर वॉज राइट। एंड जनाब आज जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं रजनीकांत साहब, उनका आज बर्थडे था 73rd और सारी जो उनके फैंस हैं, उन्होंने बड़ी उनको दुआएं वुआएं दी, इनकी वाइफ लता, इनकी बेटियां ऐश्वर्या, सुंदरी और बाकी के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो थे, इनके ग्रैंड किड्स जो थे वो भी आज थे, इन्होंने केक कटिंग की। रजनीकांत जो है वो बेंगलुरु में पैदा हुए थे 1950 में, और इनके चार बहन भाई थे। इनके वालिद साहब का नाम था राम जी राव, और बड़ी इनके साथ ट्रेजेडी हुई थी कि 5 साल की उम्र में इनकी जो मां थी जीजाबाई, उनकी डेथ हो गई थी, और बेतहाशा फाइनेंशियल जो है डिफिकल्टीज इन्होंने फेस की थी। तो फिर इनको बड़ी छोटी उम्र में लोड करियर, जिसको कुली या जिसको के वो जो मजदूर कहते हैं, उसका इन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद ये बस कंडक्टर बन गए, लेकिन ये बनना एक्टर चाहते थे। इनके एक दोस्त थे बड़े क्लोज, राज बहादुर, फिर उन्होंने इनको एनकरेज किया कि तुम मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर एनरोल करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी मैं सपोर्ट करूंगा, और फिर बहुत कोशिश के बाद इनको एक मेजर रोल मिला 1975 में अपूर्वा रागन गाल के अंदर, और उसके बाद ये बन गए ह्यूज सुपरस्टार। हालांकि वो बड़ा नेगेटिव रोल था, लेकिन ये इनकी एक्टिंग उसके अंदर जो है नोटिस हुई, और फिर तो जनाब देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो अब आज जो है वो ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, ऐसे सुपरस्टार जिनको लोग जो हैं आज वर्शिप करते हैं और
पूजा करते हैं।
हाँ, और बड़े बड़े जो हैं, खासतौर पे जो साउथ इंडियन है वो तो बहुत ही इनको पसंद करता है। आज जनाब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी सेलिब्रेट किया अपना 6th वेडिंग एनिवर्सरी। इस सिलसिले में जो अनुष्का शर्मा हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी प्यारी पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की, और बड़ी कुछ गूफी पिक्चर्स भी थी जो उन्होंने शेयर की। दोनों जो थे काले कपड़ों में थे, और यहां पे इनकी फैमिली और फ्रेंड्स भी थे, तो उन्होंने बड़ा मजा किया। उन्होंने कहा जी के द डे वॉज फिल्ड विद लव, फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो सॉरी फॉर गेटिंग पिक्चर्स पोस्टेड ऑन ग्राम लेट। तो बहरहाल जी लोग जो हैं आज इनको देख के बड़ा खुश हो रहे थे। और जनाब टोरंटो ब्लू जेस के साथ क्या हुआ?
हाँ जी,
टोरंटो ब्लू जेस जो है जुलाई 24th की जो गेम है जनाब, जो टेम्पा बे के साथ होने वाली थी, उसमें बड़ा है? जी है, हाँ, होने वाली है, होगी जो अब जुलाई 24th को जो होगी, तो उसके अंदर जो 5 लेवल सीट्स हैं उनकी जनाब जो टिकट थी $2.30 की,
$2.30
लिखा हुआ उन्होंने,
$2.30
वही ना, $2.30 की सॉरी। अच्छा, अब ये जिस वक्त जो है आई टिकट मास्टर के ऊपर, तो एक जो यूजर था रेडिट का, उसको ये इस डिस्काउंट का पता चल गया। उसने कहा जी ऑल टुगेदर 6 टिकट्स के लिए अब आपने सिर्फ टोटल $13 पे करने हैं, तो फटाफट ये टिकट खरीदो। तो लोगों ने धड़ाधड़ खरीदने शुरू कर दिए। बाद में जिस वक्त पूछा गया टोरंटो ब्लू जेस से, तो उन्होंने कहा हां जी ये एरर था, वैसे जो अब टिकट है जो ये 500 सेक्शन के लिए, ये 33.35 इंक्लूडिंग टैक्सेस है, फीस है, तो ये अब हमने करेक्ट किया। लेकिन जिन लोगों ने $2.30 का भी लिया टिकट, वी विल ऑनर दैट, और हम उनको आने देंगे गेम में। ऐसा नहीं है कि वो एंटर नहीं हो सके,
जी कभी देखा है आपने $2 का टिकट
और वो भी ब्लू जेस का, तो वो कहते हैं जी ऐसे नहीं होगा। और जनाब पाकिस्तान की जो U19 एशिया कप खेल रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर ये जो चल रहा है ICC अकेडमी ग्राउंड दुबई के अंदर, इसमें जो है U19 टीम ने, पाकिस्तान की ने, बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। कल इन्होंने हिंदुस्तान को हराया था, यहां पे जो यंग गन है अजान ओवैस, उसने 100 रन बनाए थे, और पाकिस्तान ने डिफीट किया इंडिया को बाय 8 विकेट्स। आज इन्होंने डिफीट किया अफगानिस्तान को 83 रन से, और अफगानिस्तान जो है उसकी पहली 4 विकेट्स जो हैं वो सिर्फ 60 रन के ऊपर गिर गई थी इन 13 ओवर्स। नोमान शाह ऑफ अफगानिस्तान जो थे वो सिर्फ जो थे सिग्निफिकेंट प्लेयर रहे, उन्होंने 54 रन बनाए। लेकिन पाकिस्तान के जो स्किपर हैं नसीर खान एंड फरीदून, ये जो है इसी के अफगानिस्तान के जो U19 के स्किपर हैं नसीर खान एंड फरीदून दाऊदजई, इन्होंने फिर जो है 26 रन स्कोर किए। लेकिन पूरी की पूरी टीम जो है 220 के ऊपर 48.4 ओवर्स में आउट हो गई। इससे पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की थी और इनको टारगेट दिया था 303 रन का, जो कि सिर्फ 3 प्लेयर्स ने बनाया, और शैमुल हुसैन और शाहजेब खान और रियाज उमर जो हैं इन्होंने ये टारगेट बनाया था 303 का। शाहजेब जो हैं और शामिल, इन्होंने ऑल टुगेदर 115 रन्स डाले थे। शामिल जो कि 19 इयर्स के, उन्होंने 75 रन्स बनाए ऑफ 54 बॉल्स। शाहजेब जो है उन्होंने 79 रन्स बनाए। रियाज जो थे उन्होंने 73 रन्स बनाए। और इस तरह से जो है पाकिस्तान ने आज का दूसरा मैच भी जीता U19 का।
क्या बात है जी।
हाँ जी, और तुर्की का जो फुटबॉल फेडरेशन है उसने तमाम फुटबॉल गेम्स, तमाम लीग मैचेस सस्पेंड कर दिए हैं, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि کراچیو کا جو پریزیڈنٹ ہیں فاروق کوچا ان کو اریسٹ کیا جائے کیونکہ انہوں نے پنچ کیا تھا ریفری کو ان دا فیس ایٹ دا اینڈ آف دا ٹیم سپر لیگ ہوم میچ اگینسٹ رزسپور. جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ریفری کانسٹنٹلی غلط قسم کے فیصلے دے رہا تھا. ریفری حلیل امت میلر جو ہیں وہ ان کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے منہ پہ مکہ مارا جب یہ بےچارے گرے, تو یہ جتنے بھی ان کے یہ جو تھے اس کے یہ اکن گیچو کے جو پلیئرز تھے وہ بھاگ کے آگے اس کے اندر میدان میں اور انہوں نے اس کو ککیں بھی ماری. بہرحال جی بعد میں پھر پولیس آئی تو پولیس نے جو ہے اس کو اٹھا کے وہ اندر ڈریسنگ روم میں لے کے گئے اور وہ کہتے ہیں جی اس کی بےمانی کی وجہ سے جو ہے ہم نے ڈرا کیا ہے 1-1 کا ایٹ ایرمن سٹیڈیم میں, ورنہ ہم جو ہیں وہ جیت سکتے تھے. اور
جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں بےچارا جو ریفری ہے وہ زمین پہ پڑا ہوا.
ہاں زمین پہ پڑا, اس کو ٹھڈے مار رہے تھے نا یہ سارے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی ترکیہ کی گورنمنٹ نے کہا کوئی گیمز نہیں ہوئیں گی, بس جاؤ خلی ولی, نتنگ ڈوئنگ. اینڈ جناب ایبسولیوٹلی اور لاسٹ نیوز از اباؤٹ پوما. پوما نے کہا ہے کہ اسرائیلی نیشنل فٹ بال ٹیم کو 2024 آنورڈ سے ہم بالکل ایبسولیوٹلی اسپانسر کرنا بند کر رہے ہیں. اور ان سے جب پوچھا گیا آج پوما سے کہ کیا یہ جو ابھی حماس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے یا جو کچھ غزہ میں یہ کر رہے ہیں اس کے رہتے آپ نے کہا ہے, تو پوما نے آج کہا ہے کہ نہیں, ہمارا یہ پلان جو موو تھا یہ ہم نے لاسٹ ایئر پلان کیا تھا اینڈ ویو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کنزیومر بوائیکاٹ کالز اگینسٹ اسرائیل امڈ غزہ وار. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنی الائنس اب ختم کر رہے ہیں, اس کا جو فٹ بال ایسوسی ایشن ہے, اور ہم جو ہیں اب سربیا کے ساتھ بھی ختم کر رہے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا ویسے بھی جو ان کے ساتھ ڈیل ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے 2024 میں اور اس کے بعد ہم اس کو رینیو یا ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اور کچھ بڑی نیشنل ٹیمز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, بیکاز انڈر آور فیور بگر بیٹر اسٹریٹجی وی وانٹ ٹو ہیو الائنسز ود بیٹر نیشنل ٹیمز, اور ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپس بنانا چاہتے ہیں اور ہم اپرچونٹیز جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ آج بہت بڑا جھٹکا لگا اس لیے کہ پوما نے سب سے پہلے آئی ایف اے یعنی کہ اسرائیلی فٹ بال ایسوسی ایشن کے ساتھ جو کانٹریکٹ سائن کیا تھا وہ 2018 میں تھا اینڈ دے یوز ٹو پے لائک ہیوج منی. یا تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اپنا سر, مطلب کافی جو برانڈز ہیں نا آج کل پاگل ہوئے ہوئے ہیں, جو زارا نے آج کیا ہے, جو ادھر شور مچا ہوا ہے ٹویٹر پر,
ان کا کہنا ہے کہ وہ پرانی بات.
ہاں پرانی بات ہے, وہ میں نے ابھی سنائی ہے خبر. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ سپٹمبر میں کی تھی اور لڑائی تو اکتوبر میں شروع ہوئی ہے اور کنسیو تو ہم نے جولائی میں کیا تھا اور یہ اب مطلب مجھے پتہ نہیں نا سچ کتنا ہے اس کے اندر. یو نو
ہر ایک نے اپنے,
بہرحال انہوں نے ہٹا دیا اپنے ویب سائٹ سے, وہ ہٹا دی ہے کیمپین. دیٹ واز ٹو ہاریفائنگ. ویسے میں نے بھی جب دیکھی کل رات کو تو آئی سیڈ لائک what's going on, I mean that mannequin is without any limbs and she's carrying, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تھان ہے, کپڑے کا تھان ہے جو کیری کرے, وہ بالکل لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو کہ لپٹا ہوا ہے اس کے اندر نا,
ڈیڈ باڈی.
ہاں ڈیڈ باڈی لگ رہا ہے ایسے. تو بہرحال اینی ویز ان کے لیے یہ کریٹیوٹی.
اینی وے ہو گئی آپ کی نیوز,
ہو گئی نیوز اور سنی ہے
بقیہ کی نیوز انشاءاللہ.
ساریاں بیہائنڈ دا کرٹن جو سٹوری ہیں وہ تو ہم نے آپ کو سنا دی ہیں. کس نے آپ کو بتایا ہے, کس نے آپ کو بتایا کہ کینیڈا کے اندر جو ہے سیکرٹ میٹنگز چل رہی ہیں, کس نے بتایا؟
مجھے کسی نے بتایا.
ہاں جی کسی نے نہیں بتایا, نہیں بتایا
سوائے شازیہ مالک کے.
ہاں جی پر پھر یہ تو ہیں نا.
ہاں جی
ٹھیک ہے مجھے بھائی, I'll see you انشاءاللہ tomorrow اگر میں بیمار نہ ہوئی. اب میں نے چینج کر لی اپنی اسٹریٹجی, اب آپ اور عامر ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ یہ مہینے کے آخر میں بیمار ہوتی ہے, اب میں کیا کروں گی, اب میں مہینے کے مڈ میں بیمار ہوا کروں گی. اب میں چینج کر رہی ہوں, تاکہ آپ کی ساری پریڈکشنز آپ کی اور عامر کی غلط آئیں.
وی ہیو ٹو واچ,
ہاں
واچ ناؤ,
واچ اینڈ سی,
وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. عامر
واچیں بھی اور سیئیں بھی کریں.
یہ تھی ہماری آج کی نیوز اینڈ پروگرام, اینڈ اب ہم آپ کو لیے چلیں گے کہاں پر, پروگرام ان پروگرس وتھ زیشان احمد. زیشان احمد سے آپ گیت نغمے قواریاں نعتیں وغیرہ سنیں گے, اینڈ یو کین واچ اس اینڈ لسن ٹو اس 24 hours 7 days a week. شازی جی تھینک یو سو مچ,
تھینک یو
سو مچ. باقی کی باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ کل, اس وقت کے لیے اجازت, اللہ حافظ. Thank you.
से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है।
जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में, जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए ये शमा ऐतबार की इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की।
मेरे सुर हमके अंधेरे ढले बुझते सितारे जले देखा तुझे तो दिलों में जान आई फोटो पे तराने जगे अरमा दीवाने जगे बाहों में आके तू ऐसे शर्माई छा गई फिर वही बेखुदी छा गई फिर वही बेखुदी la 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 la
यार की ये नशा ये खुशी अपना कम हो कभी उम्र भर ना ढले रात प्यार की रात प्यार की
समझ के तेरी डोली संग प्रीत लगाई सजना 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 ओ रामा
तुझ संग प्रीत लगाई सजना 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 ओ रामा
हाय
Thank you. तुझ संग प्रीत लगाए सजना सजना सजना
मन रे मन